जी, अब आगे देखें कि इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कुरान पाक की खूबियों में। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि कुरान कय्यिम है, उसमें इवज नहीं है। फिर दूसरी चीज़ पढ़ी कि लियुनज़िरा, डराता है, इंतज़ार इसका काम है। फिर वयुबशिरा, खुशखबरियाँ देता है। इसके बाद अब अगली चीज़ इसी किताब के साथ जो जन्नत में जाने वालों की खूबी बताई गई कि जब लोग आसन अमल करेंगे तो फिर क्या होगा, जन्नत मिलेगी। माँ किसी नफी ही अबदा, आयत नंबर 3, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। माँ किसी नफी ही अबदा, माँ किस से, माँ किसीन जमा कसी है, माँ के सुन ठहरने वाले जगह। हजरत मूसा के किस्से में भी हम पढ़ेंगे कि वो कहते हैं कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आता हूँ। तो गोया के जन्नत की जो सबसे बड़ी खूबी हमें यहाँ दिखी वो क्या है कि जब एक दफ़ा लोग जन्नत में चले जाएंगे तो फिर वो वहाँ जाने के बाद वहाँ से निकाले नहीं जाएंगे। और वयुनज़िरल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, पहले क्या काम था कि कुरान कुरान किसको आगाह करता है? देखिएगा आप पीछे आयतों के साथ साथ चलेंगे तो आपका जहन ज़्यादा चलेगा। साथ ही लियुनज़िरा बासन शदीदा मिन लदुन्हु, थी कि ये किताब डराता है उस बड़ी आफत से जो अल्लाह ही की तरफ से आएगी। लेकिन अब इस किताब के नज़ूल के मकासद में एक और मकसद क्या है कि खबरदार कर दे इन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया। इशारा है, बोलिए, नसारा की तरफ भी, मुशरिकीन की तरफ भी और यहूद की तरफ भी। यहूद का दावा सूरह तौबा में हम पढ़ चुके, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। नसारा के दावे पे तो बहुत सारी बातें मौजूद है, उसी आयत के अंदर ही आता है, वकालत नसारा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा इब्ने जो मरियम थे वो अल्लाह थे। इसी तरह फरिश्ते जो थे वो मुशरिकीन मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस किताब का एक बहुत बड़ा मकसद क्या है कि लोगों को इस नज़रिए से हटाए कि लोग अल्लाह की औलाद है। देखिए यहाँ आप नोट कीजिए कि इसकी अहमियत को, और भी बहुत सारे शिर्क के तरीके हैं लोगों के, लेकिन कुरान के नज़ूल के मकासिद में ये बात आ रही है कि ये अल्लाह ताला के बेटे और बेटियां और उसके नसब बनाने के अकीदे से लोगों को हटाए। आज के दौर में देखिए तो दज्जालियत की जो असल जड़ है ना, आज का मसीहियत का निज़ाम है जिसकी बुनियाद तसलीस पे रखी गई है। आप कह सकते हैं कि आज के दौर में जो क्रिश्चियनिटी की बुनियादी अकायद बन चुके हैं ना, वो तसलीद से भी ज़्यादा बढ़कर अब वो सिर्फ पॉलिज्म, पॉप के नाम का एक शख्स जो भी चाहे कानून बदल दे और इस तरह की बातें हो। एक इनका एक पूरा हिस्ट्री है कि कब पहली दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया गया था, और फिर उसके बाद पॉप को, हर दौर का एक पॉप होता है, आपने नाम सुने होंगे मुख्तलिफ पॉप्स के, कि उनको इतने ज़्यादा इख्तियार दे दिए किए हैं कि वो अब अल्लाह की इस किताब में भी तब्दीली कर सकते हैं। फिर इसी से कफ़ारे का अकीदा निकला, हज़रत ईसा के नाम पे अपनी बातें करके पेश कर दी कि जो मर्ज़ी गुनाह करो कोई फ़िक्र नहीं है, हज़रत ईसा हमारे बारे में अल्लाह ताला से पेश की माफ़ी मांग चुके हैं। फिर इसी तरह शरीयत को साकित करने का इख्तियार पॉप को दिया गया, जिसको चाहे हलाल करे, जिसको चाहे हराम करे। इसी वजह से यूरोप में आम लोगों को मजहब से अब नफरत हो गई है। याद रखिएगा एक बात, जिस दीन के ऊपर इंसानों का गलबा हो जाता है ना, तो आम लोग उस दीन से दूर हो जाते हैं। ये चीज मैंने वो हिंदू फैमिली के साथ बैठ के बात हुई उस दिन भी फील की कि सिर्फ एक इंसान को ही पूरा इख्तियार दे दिया जाता है। इसी तरह हर जगह जहां भी शख्सियत परस्ती होगी वहां दीन नहीं रहेगा। जब हिस्पानिया में मुसलमानों के ज़ेर असर जो जदीद उलूम है उनको फ़रोग़ मिला, तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो लोग थे उन्होंने, ख़ास पे जो यंग्स थे, उन्होंने कुर्तुबा, गरनाता और इस तरह की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया, क्योंकि इन लोगों को अब वो जो तालीम शुरू से इनके चर्च के ज़रिए से मिल रही थी वो पसंद नहीं रही। बहुत कुछ है इसके अंदर जिसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए ये बात याद रखिए कि दीन पर किसी एक इंसान का इख्तियार जब आ जाता है तो दीन बदल जाता है, और कुरान इसको बदलना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बातें वो क्यों कहते हैं, मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिया बाईहिम, ना तो इनको इन बातों का खुद इल्म है और ना इनके बाप दादा को। सुनी सुनाई बात, सिर्फ ज़ुबान ज़दे आम, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, ये अकीदे जो हैं ये सिर्फ तकलीद की बुनियाद पर हैं। इनके पास इसका कोई साउंड नॉलेज नहीं है। कबूरत कलीमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम, ये बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंहों से निकल रही है। कौन सी बात बताइए? कि अल्लाह की औलाद है, नौजुबिल्ला। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, वो नहीं कहते मगर सरासर झूठ। सारी बात का खुलासा क्या है? कि ये झूठ है, अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं। लम यलित वलम यूलद। तो क्या पता चला इतनी बात का, क्योंकि अब आगे मौजू थोड़ा सा पलट रहा है, कि कुरान का पैगाम साफ सुथरा है, सीधा साधा है, लेकिन इसके बरक्स लोग झूठ बांधते हैं। या जो किस लफ्ज आए, ये सिद्क का अपोजिट है। सिद्क होता है मवाफक हकीकत बात करना, अकॉर्डिंग टू दी रियलिटी। और झूठ या किस्ब उसका अपोजिट है, यानी हकीकत से खिलाफ बातें करना। किस खिलाफ हकीकत बातें करना, यानी यहाँ एक चीज़ का इशारा मिल रहा है कि झूठा मूठा इल्म जो होता है वो इंसान को नुकसान देता है। इसके बरक्स सच्ची बात, हकीकत पे मबनी बात ज़्यादा असर रखती है। लाइल्मी से की हुई बात भी झूठ होती है, याद रखिए। जुबानों को सीले, अगर कोई आपसे पूछे तो भी ना बोले, कहाँ ये कि कोई पूछे भी ना, और आप चलते फिरते लोगों को फतवे बांटते फिरें। क्योंकि कुछ लोगों को तो फतवा फरोशी की आदत होती है, वो तो जैसे बाजारों में चीज़ें देख रहे होते हैं, इस तरह फतवे भी देख रहे होते हैं। तो जहालत फैलाना बहुत बड़ा जुर्म है। आज के दौर में इस बात पे दुनिया मुसलमानों में इतना फितना नहीं है कि लोग दीन नहीं फैला रहे। इस पे ज़्यादा मसले हैं कि जो दीन फैला रहे हैं वो जहालत की बुनियाद पर लाते हैं। हम सबको रिसर्च करने की ज़रूरत है, तहकीक की ज़रूरत है, पूरे तरीके से जो बात यकीन हो, सरासर उसके बारे में यकीन हो, फिर उस बात को आगे कर दें, फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वरना सिर्फ बातों से बात का फ़ायदा नहीं होता। यहाँ जो लफ्ज़ है ना अफवाह हिम, ज़रा इसको हिम के बाद काट के देखिए पीछे क्या रह जाता है। अफवाह, अफवाह किस से? फाहुन से, मुँह। यहाँ मुँहों से मुराद क्या है? झूठी अफवाह है। आज का मीडिया, उसकी खबर उधर, पहले बोल के करते थे, अब सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है, मैसेज आगे कट 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 आगे कर दो, झूठी बात ने बाद में पता चलता है बात कुछ भी नहीं थी। तो देखिए, मालूमात में इजाफा या कमी जो होती है ना, ये इल्म नहीं होता। असल ये है कि जो चीज़ आप आगे भेज रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, वो बेहतरीन तरीके की बात हो। अब ये सारी बातें उनकी झूठी सच्ची जो भी थी उसको बयान करने के बाद लिख लीजिए कि अगली आयत में वो स्पिरिट जो लोगों को दीन के लिए काम करने पे माइल करती है, जो दीन के लिए कुर्बानियां लेने और देने पे तैयार करती है, जो पत्थर खाकर भी मुस्कुराने पे माइल करती है, उस स्पिरिट का जिक्र है। और उस स्पिरिट को यहाँ बखा कहा गया है। आयत को देखते हैं, फल अल्लक बाखे उन नफ्स का अला आसारी हिम, यहाँ कोमल गाले। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शायद अपने आप को इस गम से हलाक कर लेंगे, आप शायद अपने आप को गम से हलाक कर लेंगे इनके पीछे। क्या गम है आपको? इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस यसफा, अगर वो ईमान न लाए इस बात पर। कौन सी बात? कुरान। असफा गम की वजह से, बहुत ही खूबसूरत बात है। आप देखिए कि पीछे तसलीस की बात हुई, जिसमें नसारा के मजहबी रहनुमाओं की कमी बेशियों का जिक्र था, और इन गलत नतायज के जो भयानक नतीजे मुस्तकबिल में आते हैं इंसानों के लिए, उसका तसव्वुर करते हुए एक साहिब दर्द शख्स अपने दिल में एक दर्द महसूस करता है, जिसको बखा कहते हैं। लोगों के साथ कल क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? इसके साथ एक सच्चे मोमिन के दिल में जो कैफियत पैदा होती है ना, उसको यहाँ बखा कहा गया। बखा आइन, बख उनसे, ज़िबा करना होता है इसका मानी। देखिए आप लिख के भी देख लें, ज़िबा बखा, ज़िबा बखा, बिल्कुल साउंड से मिलता है। सूरह शुरा आयत 3 में भी आता है, लाअल्लक बाख़िउन नफ्सका, कि आप अपने आप को हलाक करने वाले हैं। और आसारिहिम, असर की जमा, निशानी, आसार कदम। और असफा गम के मारे, कहीं ये लफ्ज़ पढ़ा, या असफा अला यूसुफ, दिशाबाश। तकलीफ की शिद्दत, जब किसी का दोस्त उसे तन्हा छोड़ जाए और उसका गम जाए ही ना, ये कैफियत होती है असफ। जैसे हजरत याकूब को इतने साल गुजरने के बाद भी यूसुफ की याद आ गई, तो हकीकत यह है कि जब एक बंदा अल्लाह के दीन से जुड़ता है तो उसकी कैफियत क्या हो जाती है कि दूसरे लोगों के बारे में तड़पना शुरू कर देता है, उनके बारे में उसको फिक्र लग जाती है कि इनको क्या हो गया। और हकीकत भी यही है कि जितना लोग खुद दीन पे आते हैं उतना उनको दूसरों की फिक्र ज़्यादा लगती है। पीछे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि दूसरों की हिदायत की फिक्र ना लगना इस बात की निशानी है कि अभी अपनी हिदायत भी पूरी नहीं है। जिस दिन अपनी हिदायत पूरी हो जाती है ना, यानी बिल्कुल दिल में असल रूह पहुंच जाती है दीन की, तो उसके बाद तो आप दूसरों की फिक्र में घुलते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, आपको फिक्र लग जाती है इनको क्या हो गया, ये क्यों नहीं समझते। पहले इंसान अपने लिए तड़पता है, फिर खुद को समझा समझू लिया, तो फिर घर वाले, बच्चे, शौहर, फिर ख़ानदान, फिर वतन वाले, फिर पूरी दुनिया उसका कुंभा बन जाता है। और एक बात किसी ने बड़ी खूबसूरत भेजी कि हक के रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि इंसान इस रास्ते में तन्हा रह जाता है। सिर्फ एक मुश्किल है, जितना ज़्यादा इंसान हक के रास्ते में दूसरों के साथ रहता है वो एंजॉय करता है, लेकिन एक एक करके सारे ही झूठे सहारे छूटने लगते हैं। अल्लाह भी तो बंदे को फिर देख रहा होता है ना कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहा है ये ज़ुबान की नोक से कहा है या दिल की गहराइयों से कहा है। जब भी हक बात को मानेंगे आप तन्हा रह जाएंगे, अपनों में दीवाना, जिसको कहते हैं ना कि लोनली इन द क्राउड, तन्हाई। और ऐसे वक्त में फिर उस तन्हाई के अंदर इंसान के दिल के अंदर से जो जज्बे फूटते हैं ना, आप उनको सामने रख लें। और वो जज्बे होते हैं कि जो एक इंसान को इस चीज़ पे माइल करते हैं कि वो लोगों के लिए तड़पे, वो लोगों की फिक्र करे, लोगों को बताए कि देखो ये दुनिया जिसके दजल में और जिसके धोखे में तुम आज जी रहे हो, ये तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाली है। कभी सोचे, मैं अक्सर अपने आप को भी कहती हूँ कि इतनी सी बात नहीं मैं दूसरों को समझा पाती, मेरे अंदर क्या खूबी है कि लोगों इस दुनिया के जाने के दिन को सोचो। जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे क्या साथ लेके जाएंगे, कौन मेरे साथ होगा, किसका साथ मुझे उस वक़्त चाहिए होगा। कोई एक है जो मेरे साथ कब्र में जाना चाहेगा, कोई है जो उस वक्त मेरी मदद करना चाहेगा, वल्लाह ही नहीं करेगा। एक इंसान को इसकी फिक्र रखनी चाहिए, तो ज़रूरत है इस बात की कि हक के रास्ते में सबसे बड़ी कुर्बानी दे दें। और वो क्या है कि आप लोगों की फिक्र लगा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस चीज़ की कमी थी, जन्नत, मुकाम महमूद, वसीला, कहीं आपको सादिक और अमीन की बातें, कितनी खुशियां थी आपकी ज़िंदगी में दीन के नाते से देखें। और उनको ये भी पता था कि मैं नबी हूँ, मेरे बाद जितने लोग नेकियां करेंगे उन सबका अजर मुझे ही मिलेगा, फिर भी आपकी कैफियत क्या थी कि आप रात को रोते अल्लाह के आगे और दिन को रब को पुकारते। तो ये कैफियत हमें अपने अंदर लानी है। या सफ़ अला यूसुफ फलाअल्लाह का बाकी नफ्स कला सारी है। क्या मैं अपने अंदर ये दर्द महसूस करती हूँ, है ये तकलीफ मेरे दिल में कि लोगों को दीन की दावत देनी है। सूरह फातिर आयत 8 में अल्लाह ताला कहते हैं फला तस्खब नफ्सका अलैहिम, आपकी जान ना चली जाए इनके ऊपर हसरतें करते हुए। सूरह हिजर आयत 88 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वला तहजन अलैहिम, डोंट वरी अबाउट देम। सूरह मायदा में आता है फलाता सालल कौमिल काफिरीन, आप गम न खाएं काफिर कौम का। कहीं ये नहीं आया कि फला तगज़ब अलैहिम, क्योंकि अल्लाह के नबी को गुस्सा नहीं आता था, आपको गुस्से से ज्यादा रहम आता था, तरस आता था, तकलीफ होती थी। और अपने ऊपर ये रख के सोचिए कि मुझे लोगों की बुराइयों पे गुस्सा आता है या मुझे उनके ऊपर रहम आता है। ये आपके लिए एक छोटा सा क्राइटेरियन है, क्या मेरी कैफियत बखा वाली है कि नहीं, इसका पता चलेगा लोगों को गलत काम करते देखकर उनके लिए तड़पना, जो माँ की तड़प होती है ना बच्चे को गलत काम करते देखकर, बेचैन नहीं हो जाती माएँ। आपने देखा होगा कि माएँ इतनी बेचैन हो जाती हैं उस वक़्त किसी तरह से अपने बच्चे को उस खड्डे में गिरने से बचा लें। अल्लाह के नबी के अकवाल मिलते हैं कि लोगों, जो बातें मुझे पता हैं, अगर तुम्हें पता लग जाए, यानी आखिरत में क्या होगा, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, जंगलों में भाग जाओ, तुम बिस्तरों पे लज्जत लेना छोड़ दो अपनी बीवियों से, इतना गम लग जाएगा तुम्हें। तो ये दज्जालियत, जिसका आज इंसानियत उससे कई हजार गुना ज्यादा शिकार है। कभी सहाबा के अकवाल पढ़े ना अल्लाह के नबी के बाद, एक सहाबी थे, बाजारों में गए, देखा लोगों को भाव तो करते, देखा जरा दुनियादारी में पड़े हुए थे, तो फौरन वहां खड़े होकर कहते हैं, लोगों आज ये वक्त आ गया कि हमारा ये हाल हो गया। अभी तो अल्लाह के नबी को गए हुए थोड़े दिन गुजरे हैं, कुछ साल कुछ महीने गुजरे हैं। मैं सोचती हूँ वो सहाबा अगर आज के दौर में आते तो क्या कहते। जब दौलत मिली अब्दुलरहमान बिन औफ और इन सबको, बहुत सारों को बाद में, तो रोया करते थे, कहते थे एक वक्त था कि हम इस्लाम पे आए थे, हमारा सब चला गया था, अब सारा वापस मिल गया, अब तो हम कुरान सुनते हैं तो हमें रोना ही नहीं आता। तो आज सीखते, तो आज हमारी जायदादें और आज हमारे जो मामलात हैं उनको देखते तो क्या होता, सोचने की बात है। दिल की सख्ती जो होती है ना, ये दूसरों से बंदे को बेनियाज करके अपना ही नियाजमंद बना देती है। तो याद रखिए, ये जो असफ़ की कैफियत है ना, असफ़ा गम खाना, इसको उर्दू में गम खाना कह लें, गम खोरी, इसके दो दर्जे होते हैं। पहला दर्जा क्या होता है, कोई आपकी बात ना माने, फिर गम खाते हैं आप, कोई आपकी मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, आता ही नहीं, बाकी बातें किधर करेगा। दूसरा इसका दर्जा क्या होता है कि आपको तो माने मगर हक का पैगाम ना माने। बात समझे, पहली बात है कि आपकी जात से ही चिढ़ है, दे डोंट लाइक यू, और दूसरी बात है कि नहीं, आपकी तारीफों के तो गुनगाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन अमल के वक्त फिर कोरे के कोरे। कुफारे मक्का का मुकाम नंबर दो था। आपका हाल क्या था कि अल्लाह के नबी को सादिक और अमीन कहते थे, एप्पल ऑफ द आईज थे आप, लेकिन आपकी बात को नहीं पसंद करते थे। इसके बरक्स जो मक्का के लोग थे ना, मदीना के, उनका मामला पहले वाला था, वो अल्लाह के नबी से हसद की वजह से आपकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनकी बात मानना हमारी चुंदराहट को खत्म कर देगा। अमूमन हमें किस बात का गम होता है, चलिए अपने ऊपर लें, क्या मुझे पहले दर्जे का गम है कि दूसरे का। यकीन कीजिए, खुले दिल से अगर बात करें ना, तो अक्सर लोगों को गम पहले दर्जे का होता है। मुझसे क्यों नहीं पढ़ते, मेरी बात क्यों नहीं मानते, मुझे अहमियत क्यों नहीं देते, फुलां मुझे नहीं मान रहे। भाई तुम मुझे बिल्कुल ना मानो, तुम अल्लाह की मान लो, अल्लाह की किताब मान लो, पढ़ लो। और याद रखिए, जो अपने मिशन से सच्चा होता है ना, वही ये काम कर सकता है कि लोगों को अल्लाह से जोड़े। जब लोग उससे जुड़ते हैं ना, उसको खिंच चढ़ती है, उलझन आती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं तो वो बेजार होता है, उसको खौफ आता है कि कहीं मेरा बढ़ाना, मेरा बताना, मेरा किसी की खिदमत करना कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम मेरे ही गुन गाते रहो। आज हम अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन हमारा क्या गम है, हमारे गम क्या है। हम उनके वारिस बनने के दावेदार तो हैं, मगर अपनी जात के खौल से ही नहीं निकलते। जब मोहब्बतों के रुख बदल जाते हैं ना, तो गम भी बदल जाते हैं। अभी तक हमारी मोहब्बत दज्जालियत के साथ थी, दुनिया से, तो हमारे गम भी दुनिया के थे, ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी मैचिंग नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ करके भी आपको कुछ ना मिले एंड ऑफ द डे। लेकिन जब ये गम मिलता है कि अल्लाह के बंदों का क्या होगा, फिर आप रोते हैं। एक गम ये होता है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, और एक गम क्या है कि उम्मत के बच्चे क्या खाएंगे। आप अपने लिए क्राइटेरियन सेट करें, क्या मुझे इस किताब से सच्ची मोहब्बत है, क्या मुझे इस किताब की तालीम, इसको फैलाना, इसको पढ़ना, इस पे अमल करना, इससे सच्ची मोहब्बत है, तो फिर इसका एक इजहार जरूर होगा कि आपको लोगों से नफरत नहीं रहेगी, तड़प पैदा होगी। लोगों से नफरत को तड़प में बदलिए, बदखोइयां करने की बजाय दुआएं करें। मुझे बहुत दुख होता है जब कुरान पढ़े हुए लोग अपनी दोस्तों और अपने प्यारों के बारे में नेगेटिव जुमले बोलते हैं, वो नहीं आएंगे, वो नहीं सुनते, उनका हाल ना पूछें, ये ना पूछें, तड़पें तड़पें। कल मुझे रात किसी का फ़ोन आया, एक सिस्टर हैं, बहुत साहिब दर्द है माशाल्लाह, नॉन मुस्लिम्स तक भी बात पहुंचवाती हैं और उनके दिल में मैंने इसकी बड़ी तड़प देखी है। तो वो अपनी किसी नॉन मुस्लिम दोस्त दोस्त कह लें या हमसाई है, उसका एक मैसेज मेरे पास उन्होंने फॉरवर्ड किया। यकीन करें अगर मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊं, पहले तो मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मुझे उन्हीं के नाम से मिला, मुझे नहीं पता था कि ये किसी और की तरफ से उनको आया है। उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था कि भाई आप पढ़ लें। किस्सा मुख्से जब मैंने पढ़ा तो मैं घबरा गई, जिसमें इतनी कड़वी बातें थी, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं खाना नहीं खा सकती। बल्कि मैं आपकी सोच से पढ़ के सुना ही देती हूँ कि कुरान से और दीन से और इस्लाम से दूरी बंदे को कहाँ ले जाती है। इंग्लिश रोमन उर्दू में, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान में आपको इसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। ये एज इट इज़ मन जो मैसेज मुझे किसी का भी आया उनका सुन लीजिए, किसी ने फॉरवर्ड किया। जो इंग्लिश है वो इंग्लिश, जो उर्दू है वो उर्दू। आई एम इन डीप 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 डिप्रेशन, स्लेप्ट होल ओवर होल डे। कहती है मैं गहरे गहरे डिप्रेशन में हूँ, सारा दिन सोई रही हूँ, भूखी हूँ, पर उठी भी उठा भी नहीं जाता। फिर इसके बाद एक उनका मैसेज है, मेरा तो कोई भी नहीं काम ठीक होता और नहीं होता, मैं तो वापस, ये नर्शिया क्या होता है, निराशा कुछ इस तरह का लफ्ज है, कि मैं वापस जाती हूँ, नाउमीदी कह लें, हाँ जी, कैसे जीऊँ क्या करूँ, कोई नहीं समझता या क्या कुछ कर सकूँ, हर हार के टूट टूट गई हूँ, बार बार हिम्मत करके उठती हूँ और गिर जाती हूँ, कोई काम का मतलब नहीं, बुरी फंसी हूँ यहाँ आके मैं। वर्स्ट रेस्ट, जैसे वर्स्ट होता है ना, उसकी EST कर ले आगे, वर्सेस्ट थिंग वाज टू हैव दिस शैतान इन माई लाइफ। ओ गॉड, क्या करूं क्या समझूं। आपको इन लफ्जों की कड़वाहट महसूस हुई है? उन्होंने मुझे भेजा मैसेज, फिर फोन पे बात हुई, क्या करूं। मैंने कहा फौरन जाए उनके पास। कहती मैं उनके पास जाती ना वो मेरी बेइज्जती करती है, वो इतने डिप्रेशन में है कि जो उनके सामने आता है ना वो उसको गालियां देती है। मैंने कहा आप चली जाए इस वक्त, उसको ना आपने तबलीग करनी है ना इस्लाम सिखाना है, आपके हाथ का नहीं भी खाती ना, आप कोई सेब केला लेके चली जाए, आप उनको कहें कि आपका मैसेज पढ़ के मेरे दिल में आपकी तड़प आई है, आप मेरी बहन है, बैठो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। क्योंकि इनको पता था वो अकेली घर में पड़ी होंगी। मैंने कहा आप, ये है वो वक्त जिस वक्त आप उनका दिल जीत लेंगी, कोई बात ना करें। उसको अपने माँ बाप से शिकवा है, उसको अपने बच्चे अपने शौहर से शिकवा है, उसको दुनिया के हर इंसान से शिकवा है। तुम उसके लिए सब कुछ बन जाओ, हर रिश्ते में तुम उसको दिखो। हिम्मत तो बड़ी करनी पड़ती है जब बंदे के। मैंने कहा निके आप जाएं, क्योंकि हमारे नबी ने भी इस तरह इस्लाम फैलाया था, बिलीव मी। इतनी मोहब्बत करें आप लोगों से। मैंने कहा आप सोचें वो मर जाए कि ऐसे ही लोग खुदकुशी करते हैं, और मुझे यकीन है कि ऐसे ही लोग खुदकुशी करते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नाम की चीज़ नहीं उनको दिखती, कि वो अल्लाह के, मैंने कहा अल्लाह की कोई बात ना करिएगा उनके सामने, वो इतने बैड मूड में है कि वो अल्लाह को भी नाउज़ बिल्ला बुरा भला कह देंगी। आप सिर्फ उसकी डांट सुनने जाएं। आप सोचें आप बाहर उसके घर जाएंगी ना, दरवाज़ा खोलेंगे वो आगे से प्लेट मारेगी आपके मुंह पे, आप तैयार रहें मत, आप इस सोच के साथ जाएं कि वो आपकी तारीफें करेगी। दिल बड़ा करके जाएं, फिर देखें है तो इंसान है ना, पत्थर तो नहीं है। और ये वो औरत है जो चंद दिन पहले हमारे एक दर्स में थोड़ी देर के लिए आई थी एंड पे, उसे भी डिप्रेशन में थी, लेकिन जो भी उसने सुना तो खत्म होने के बाद तो उसके मुंह से बेसाख्ता लफ्ज निकला सुकून। तो मैंने जब उसकी तरफ देखा तो कहती सुकून मिला है मुझे, तो मैंने कहा सुकून इसमें मिलेगा। ये तड़प पैदा करें, यकीन करें लोगों से नफरत नहीं हो सकती, तड़प नहीं पैदा, लोगों के लिए तड़पें, लोगों की दुआएं करें। क्या हमने उस बहन के लिए दो नफिल पढ़ के दुआ मांगी? यकीन करें इस तरह गम लग जाता है बंदे को दूसरों का, जैसे अपने बच्चों का गम होता है कि अल्लाह इसको बचा, ये आग में ना जाए, ये जहन्नुम में ना जाए। देखिए जिससे प्यार होता है उसकी चीज़ों से भी प्यार होता है कि नहीं? हमें अपने भाई बहनों के बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? रिश्ता है ना, कैसे भी हों, खूबसूरत हों कि ना हों, प्यारे लगते हैं ना। तो अल्लाह से प्यार है तो उसके बंदे प्यारे लगेंगे कि नहीं? फिर जब कोई बंदा बुरा नहीं लगेगा तो क्या आप उसकी गीबत करेंगे, बदगुमान होंगे? इस्लाम इस तरह आपका तज़किया करता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके अंदर से सब बुरी बातें निकल जाती हैं। कभी जुबान नहीं खुलेगी किसी की बुराई के लिए जब आपको उनसे प्यार होगा। रहम खाएं, तर्स खाएं, और यकीन करें मैं जो बातें बता रही हूं, जाहरी तौर पर कोई कशिश ना आपको उस इंसान में दिखे, कूड़े का ढेर लगे उसकी जिंदगी आपको, लेकिन आप उसके लिए दिल में दर्द महसूस करेंगे, फिर आप उठेंगे, फिर उसके बाद होगा। आप देखिए, जरा से इस्लाम पे कोई फितना उठता है तो हम चोर करते हैं, चूं चां करते हैं, चंद दिन बाइकॉट करते हैं, फिर ख़त्म। फिर क्या हुआ? फिर सब वही। आप चंद दिन किसी मुल्क की प्रोडक्ट्स ना लें तो वो लोग जो पहले ही सुन्नतों पे ज़िंदगी बसर करते हैं, वो तो इनका बाइकॉट मुकम्मल तौर पे किए होते हैं। तो बहरहाल ये मौजू बड़ा सख्त है, लेकिन अपने दिल में हम इस दर्द को पैदा करें और आप तड़प के बोलें तो ये कैसे हो सकता है कोई आपकी बात ना माने। खा लें, सुन लें बातें, डांट सुन लें, बुला लें, बताएं, तड़पें, रोएं। अल्लाह के नबी आपको तक घर घर जाते थे, कबीले कबीले के पास जाके कहते थे, या इबादी लैया, या इबादी, ओ अल्लाह के बंदो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कभी आप बाजार में और कभी आप सफा पे हैं तो कभी मरवा पे हैं, कभी काबा में खड़े होकर लोगों को बुलाते थे। फिर आता तो वो है जिसका नसीब है, लेकिन आपको इस तड़प से फायदा पता क्या होता है? एक बात समझ के आगे चलते हैं। जब आप बुलाते हैं लोग नहीं आते, यही जवाब है ना आप में से अक्सर का मेरे इस वक्त इन बातों के जवाब में, वो नहीं आते पर आप जम जाते हैं। दो चार घरों से ठोकर खा के तो आएं जरा अल्लाह के नाम पे, ठुकराएं लोग आपको, आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं, हम छुक जाते हैं फिर कि अच्छा मुझे अल्लाह के लिए ये बात सुननी पड़ी, अल्लाह तुझे तो फिर पता ही है। तो जितना आप तड़पेंगे उतना दूसरों को फायदा हो ना हो आपको फायदा होगा। अब एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह के नबी की तड़प में कोई कमी थी तो लोग फिर क्यों नहीं आते? तो उसका जवाब आयत 7 में है, दज्जालियत। इन्ना जालना मअल अर्दि ज़ीनत लहा, यकीनन हमने बना दिया है जो कुछ इस जमीन पर है इसे इसका बनाओ सिंघार, यानी इस दुनिया को इनके लिए इतना खूबसूरत करके रख दिया है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि लीना ब्लुआ हुमा अहसन अमला, ताकि हम आजमाएं कि इनमें से कौन है बेहतर अमल में। ये है सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ी रुकावट। लोगों के दुख दर्द के जलने के कुड़ने के बावजूद लोग आते क्यों नहीं है इस चीज पे? क्योंकि रास्ते में दुनिया की खूबसूरत तख्ती लगी हुई है। और आप इस लफ्जों की जरा उदासी को तो महसूस करें, इन्ना जालना मा अलल अर्दी, हमने बना दिया जो कुछ ऊपर जमीन के है जीनतन, और जीनत का लफ्ज आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जीनत कौन सी होती है? अट्रैक्शन। पूरी सूरत का जो बुनियादी थीम है ना, ये जीनत ही है, और दुनियावी आराइश और जिबाइश। आप कह सकते हैं पूरी सूरत कहफ का मेन थीम दुनिया की जीनत, आराइश, चमक दमक। इतना इंसान इसमें खो जाता है कि इसे आखिरत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं आता। और जितना आप वेस्टर्न कंट्रीज में आगे बढ़ते जाएंगे ये चमक बढ़ती जाएगी, अकल दंग रह जाती है। असबाब, चीज़ें, एक मॉडल, दूसरी चीज़, तीसरी उससे बढ़ के, और मीडिया ने जो इस पर अपना किरदार अदा किया है, अल्लाह की बना यूँ चमकता दमकता दिखाते हैं चीज़ों को कि जिनकी नहीं होती उनकी राल टपकती है, और जिनकी होती है उनके सर फखर से बुलंद होते हैं, हाँ हमने फलां ब्रांड की चीज़ अपने कमरे में रखी और अपने हाथ में पकड़ी है। फिर लोग इन्हीं के पीछे तो भागते हैं। हमारे मुल्कों वाले क्यों बैठ के वहाँ फ़ोन पे आपको कहते होंगे अच्छा वो ले आना वो ले आना? क्योंकि वो तस्वीरों में देखते हैं, उनको एड्स मिलते हैं, ऐसे अपने मुल्कों में भी मिल जाएंगी। क्यों बाजारों में भागते हैं लोग, कभी आपने सोचा? मुझे कभी समझ नहीं आई कि लोग मॉल्स में क्यों जाते हैं। ये मेरी पर्सनल बड़ी आप झटकी सी चॉइस कह लें, यानी मैं अगर कभी किसी के साथ गई भी हूँ ना कभी ज़िंदगी में दो चार दफ़ा, मुझे समझ ही नहीं आई किधर से मैं लूँ क्या। मुझे तो बाहर लगता है कि वहाँ चीज़ें आम इस्तेमाल वाली नहीं होती, इल्ला ये कि अच्छी भी होती होंगी, मैं किसी को मना नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। जब कोई मुझे कहता है ना आपको फलां मॉल ले जाए, मैं कहती शुक्र है मेरे पैसे सेव है, मैंने कुछ लेना ही नहीं इधर से, मैं तो नहीं 50-100 रुपये का जूता लूँगी अपने लिए, पागल हूँ, 10 का भी मिल जाएगा मैं यहाँ से 50-60 का क्यों लूँ। तो बात यह है कि सोचने की बात है, ये वो चीज़ें हैं जो मिली क्यों थी? लिनब्लुवा हुमा अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम आजमाएं उनको कि इनमें से कौन है बेहतर अमल में। ये आजमाइश नहीं पता, लफ्ज लिनब्लुवा हुम को बड़ा करके लोगों को दिखा दें, खुद बहुत दुनिया की जेबो जीनत कम हो जाएगी। छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको, देखिए कि किसी के पास कोई चीज़ है, लेट्स सी अगर मिसाल मैं देती हूँ कि गोल्ड है, किसी के पास गोल्ड है, कोई आके एक तोला उसको कहता है ये रख लो थोड़ी देर, ठीक है, एक तोले की चीज़। वो सोचता है कि शायद इसने मुझे दे दी इनाम के तौर पे, खुशी के तौर पे, वो कहता है थैंक यू। कोई एक और आता है, वो उसको 5 तोले की चीज़ देता है, खुश होगा ना कि पहले 1 तोले की चीज़ थी, अब 5 की मिल गई। मिसाल कुछ भी ले ले। और अगर कोई आए और कहे कि इस 1 तोले की चीज़ को रख लो मेरे पास, अपने पास, ये सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा सा मैं देखूँ कि तुम कितनी चीज़ों की हिफाजत कर सकते हो। आप अपने बच्ची को ही दे सकते हैं कि 1 तोले की चीज़ भला तुम संभाल के रखती हो कि नहीं, देखो ये तुम्हारे पास रहेगी और मैंने ये देखना है कि ये चोरी तो नहीं होती, ये ख़राब तो नहीं होती। अब वो एकदम सोचे कि अच्छा अम्मी आप तो मुझे मुश्किल में डाल रही हैं, कल आप उसको 5 तोले का सेट पकड़ाती हैं कि बेटा इसको भी संभालो, भला कैसे संभालती हो। जितनी बड़ी दौलत कोई आपके पास रखवाता जाएगा क्या होगा, खुशी होगी? ये है लीना ब्लू हमसन, कुछ को अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा दे के आजमाया हुआ, वो रिलैक्स्ड है खाली हाथ, कुछ को थोड़ा और दिया, कुछ को। ये जितनी दुनिया मिलती है वल्लाही उतना इंसान जेरे बार है। ये दुनिया के ठाट बाट, ये आजमाइश है, ये दिलचस्पियां, ये रौनकें, ये सब है। आप एक जुमला लिखे, मैंने कई बार बोला है हर क्लास में, हर नेमत इम्तिहान का एक पर्चा है। मेरे बच्चे इम्तिहान के पर्चे, मेरा जेवर इम्तिहान का पर्चा, मेरा घर इम्तिहान का पर्चा, शौहर बीवी बच्चे। और ये सिर्फ हराम की नहीं, हलाल की बातें हो रही हैं, हराम तो है ही मेरा पर्चा। जायज़ नेमतें भी हमारे लिए आजमाइश है। सूरत आल इमरान में पढ़ चुके हैं आप, आयत गालिबन 13-14 ही थी कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन, और उससे आगे देखते हैं तुम रखते क्या हो, करते क्या हो, खो के ना रह जाओ इसी में। जैसे शम्मा के इर्द गिर्द परवाने होते हैं ना, सोच देखें कभी कैंडल लाइट जलाएं अगर पाकिस्तान में खुली जगह पे, तो इर्द गिर्द से पतंगे आ जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये रोशनी है, लेकिन क्या होता है, टूट टूट के गिरते हैं, इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। वो समझे थे ये रोशनी है, इधर गर्मी मिलेगी, लेकिन वो उनकी मौत थी। अब आप शम्मा बना लें, कैंडल बना लें इस दुनिया की जीनत को, और हम क्या हैं, परवाने। जो परवाना यानी इंसान इस शम्मा की जाहरी रोशनी और चमक की तरह खिंच गया, फकद खसीर खुसराना मुबीना, सूरह निसा 119 में आता है, वो तो ऐसा तबाह हुआ कि बहुत ही खुला खुला तबाह होना, चकाचौंध रोशनी। फिर ऐसा इंसान हकीकत में अल्लाह से हटकर उस दुनिया में पता, एक तरफ है अल्लाह नूर समावाती वाला, एक उसकी चमक है, एक उस आखरत की चमक है। वो तो उधर जाएगा, उसको वहां दिखेगा। देखिए ना, किसी को पता चले कि तुम्हें रब मिल जाए ये अच्छा लगता है, या तुम्हें ये दुनिया मिल जाए क्या अच्छा लगता है? तो हम तो सोचते हैं रब मिल गया तो जिंदगी बोझल हो जाएगी, लेकिन असल बात क्या है? और जिस चीज से अब ये दुनिया खत्म करें, देखिए पीछे से रब चल रहा, आप तड़पे, लोग आए नहीं, क्यों नहीं आए, इन न जाल ना माल अलर दिजी ना, दुनिया बड़ी सजी संवरी है उनकी। अब आप कहते हैं फिर क्या करें, उस जीनत को कम कर दें, कैसे करें, लेक्चर दें? नहीं, आयत 8 पढ़ा दें, वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, और यकीनन हम बनाकर रख देंगे जो कुछ इस जमीन पर है उसे एक चटियल मैदान। क्यामत का बलडोजर चलेगा तो दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी, सब चमक खत्म, दमक खत्म, ना पहाड़ ना समंदर ना ये खूबसूरत इमारतें। क्यामत के दिन जमीन की सताई कैसे खेत का मंजर पेश कर रही होगी जिसकी फसल कट चुकी होगी, सिर्फ बचा खुचा सूखा चूरा इधर उधर बिखरा होगा। मैं जब भी इस आयत पे आती हूँ तो मुझे चंद मंजर याद आ जाते हैं। एक तो कभी आपने सड़क बनती देखी है पाकिस्तान में? पहले वो कितने पत्थरों के ढेर लगाते हैं, बजरी और पत्थर और कोलतार और क्या कुछ, खूब खट 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 होती है। फिर एक दिन पता चलता है कि सड़क बन रही है, फिर आखिर में क्या होता है, सब कुछ डाल के फिर उसके ऊपर बिल्डोज़र चलता है, और जब बिल्डोज़र चलता है तो पूरी सड़क हमवार हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है आज कोई ऊंचा कोई नीचा, किसी का घर बड़ा किसी का छोटा, किसी की दौलत बड़ी किसी की वो, कियामत का बिल्डोजर चलेगा तो सब बराबर। सूरह वाकिया में भी आप पढ़ेंगे हाफिजत और राफिया, ऊंचों को नीचा और नीचों को ऊंचा कर सकती है, करने वाली चीज़ है कियामत। एक और मंजर मुझे याद आता है, बहुत पहले का देखा हुआ, फिर बाद में कई बार देखा, लेकिन जब पहली बार देखा तो बहुत दिल हिला। अमेरिका में कन्वेंशंस बहुत होते हैं, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुस्लिम्स जाते हैं, मरूफ है, 40-50 हज़ार मुसलमान होते हैं उसमें। फिर उसमें वो मौका देते हैं स्टॉल्स लगाने का, भारी कीमतों पे लोग अपनी पूरी दुनिया से मसनूआत लेके आते हैं। बिलीव मी के एक एक स्टॉल 5-5 हज़ार डॉलर का भी होता है। पहले तो कीमत देते हैं लोग, जगह की सिर्फ एक टेबल रखने की जगह, फिर जो उसको सजाते हैं डिस्प्लेस, बाद लोग 4-5 स्टॉल लेके, जैसे इतनी बड़ी जगह ली, अब इसके अंदर एक छोटा सा मिनी शहर बसाते हैं, पूरा डिस्प्ले बैनर्स दिस दिस, और हजारों खर्च होते हैं उस पर ताकि लोग आए देखें हमारा प्रोडक्ट। कुछ लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए आए होते हैं, बातें करते हैं, और इस जगह लेने पे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जिस दिन सेटअप होता है इतने झगड़े होते हैं, ये तो मेरी थी वो थी, मैंने तो ये सोची थी ये थी, किस्सा मुख्तसर, जो पीछे वाला है वो सस्ता, जो महंगा है वो महंगा है, अगला महंगा है, और इसी तरह होता है। 3 दिन का वो कन्वेंशन था जब फर्स्ट टाइम मैंने गई, उस वक्त की फीलिंग्स है, हम भी देख के रश कर रहे थे, हम भी गए ऐसे ही, किसी ने बताया आप जाएं, आप भी दीद का काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा। खैर किस्सा मुख्तसर गए, पहले मौका था, पीछे कहीं छोटा सा स्टॉल हमें मिला, पता भी नहीं होगा किसी को इधर कुछ है, हम उसे हसरत से देख रहे थे। अच्छा हुआ बड़ी बड़ी कंपनी है अमेरिका में, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने वहाँ मुसलमानों को काफ़ी कुछ दिया हुआ है। खैर किस्सा मुख्तसर के जिनके स्टॉल्स को देखकर हम हसरत कर रहे थे, हसरत से मुराद ये कि खुशी हो रहे थे, लेकिन लग रहा था कि इन्होंने कितनी तैयारी की। और लोग कहते हैं कि ये कन्वेंशन ख़त्म होता है 2-3 महीने के बाद दोबारा अगले की शुरू हो जाती थी, 8-9 महीने की तैयारियों के बाद लोग आते हैं, हज़ारों खर्चे हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में लोग सामान लेके आते हैं, ट्रकों में आते हैं दूसरे शहरों से। जो मंजर था वो था आखिरी दिन का, जिस वक्त वो ख़त्म होता है, यकीन करें यही आयत जो इस वक्त मेरे और आपके सामने है, ये मेरी आंखों के सामने थी कि वो बड़े बड़े स्टॉल सजे हुए, अब वापस किसने लेके जानी है, कोई वो कागज़ की चीज़ें होती हैं, कोई मोटी कोई प्लास्टिक की, यानी पैसा तो लगा होता है, वो फिर सब वहीं, वो जब निक चीज़ें अपनी पैक करते, सिर्फ अपना सामान ही उठा के भागना होता है, तो जब वो कन्वेंशन वाले वर्कर्स आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने हॉल लेना होता है, फिर उसके बाद बस वो टक टक करके चीज़ें गिरने की आवाज़ें आती, पीछे पूरी उन्होंने तारें पर्दे और क्या कुछ लगाया था वो गिरती हैं, फिर जो जिनकी जो सब चीज़ें वो सब चीज़ें क्रैश होती हैं। वो कहते हैं जिसको जो लेना है ले जाओ, इतनी हज़ारों की महंगी चीज़ें डिस्प्लेज हैं, कोई रो लेके कौन जाए, क्योंकि अक्सर लोग बाहर से आए होते हैं, उठा के लेके जाना ही तो एक महाल है, चीज़ें निकल वो जो बचती हैं वही उठानी मुश्किल होती हैं, चीज़ें कौन उठाए, लोग फर्नीचर तक वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई नला जाए लो नमा ले हसई तंजुरुजा, इसी तरह हम सब ने भी एक दिन जाना है, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। आज जाके अपने कमरे को देख लें, घर को देख लें, कपड़ों को देख लें, वैसे तो आप माशाल्लाह रोज ही देखते होंगे, अब इस नज़र से कुरान तो ये सोच दे देता है, सच्ची बात है, खरीदते ही आप सोचते हैं ये मेरा नहीं रहना, पकड़ते ही चीज़ आप कहते हैं ले लूँ जानी, ये मेरे पलड़े में तुलनी वहां जाके है। और इस दुनिया ने हमें कितना दुखी किया हुआ है, कितना खपाया हुआ है, और इंजॉय फिर नहीं कर पाते। तो ये है इस सूरत का मेन थीम, जितना इससे बच सकते हैं अपने आप को बचा लें। सच्ची खुशियाँ सिर्फ उसको मिलेंगी जिसने सच्ची जात से ताल्लुक जोड़ा, और वो घर बार दुनिया की चीज़ें जिस पे बिल्डोजर फिरने वाले हैं उसको सिर्फ ज़रूरत का रखें। असल कहानी ये नहीं है कि अब आप कोई क्या कहते हैं खैमा लगा के बैठ जाए, ज़रूरत का रखें, इस्तेमाल करें। मुझे तो अपने घर का वो कोना भी चुभता है जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, जिसको इस्तेमाल ना करो, मैं तो खौफ ज़दा हो जाती हूँ। और कहाँ हमारे वो बड़े बड़े सजे हुए ड्राइंग रूम के जहाँ हफ्तों कोई नहीं बैठता, जहाँ कोई बैठ भी जाए तो गम लग जाता है कि अब इसको फिर साफ भी करना पड़ेगा। अपनी एक एक नेमत देखें, क्योंकि हमें मुश्किल इसलिए लगता है, सबक तो यहाँ पूरा हो गया ना, लेकिन अगली आयतें जब हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो फिर आप देखेंगे कि किन के लिए फिर निकलना आसान हो जाता है हक के रास्तों में, जिनकी दुनिया मुख्तसर होती है, और जो दुनिया बढ़ाते रहते हैं फिर वो अल्लाह के काम के नहीं बन सकते। دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بدل دے. یہ جو لفظ سعید ہے سواد عین دال سے. سعود کہتے ہیں زمین کا بلند حصہ. جرس کہتے ہیں درخت کاٹ کر صاف کر دینا, یعنی درخت کو درخت کاٹا کھا کر اس کو صاف کر دیا. چلیے اور کچھ نہیں تو آٹم کا سیزن تو ذہن میں لے آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے. جی آج وہاں پہ بھی لاتے ہیں انہیں کہ وہاں سے سن لیں, نو پرابلم. اب تو پھر ہو گیا بڑا, میں ان شاء اللہ اس کو اپلوڈ کر بات کر دیتی ہوں ابھی. جی کیا سیکھا آپ نے؟ پھر ہم تجوید کے کیا حالات ہیں؟ نہیں ہوگی بڑا یہ ایک دو کمنٹ ہے آپ کے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرتے ہوئے اس دنیا کی دجالیت سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی سوچوں کو قیم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. سب تعریفوں کے لائق ذات اللہ کی ہے جس کا قرب چاہتی ہوں اس کتاب پر عمل کر کے, کیونکہ اب صرف پڑھتی ہی نہیں سمجھتی بھی ہوں اور نظریں آخرت پہ لگائی ہوئی ہیں. میرے رب کے کلام سے زیادہ واقعی کوئی دوسرا خوبصورت کلام نہیں. کاش امت کو اس بات کا احساس ہو جائے اور شعور اور بیداری پیدا ہو جائے. جی جی فاریہ آپ نے کیا سیکھا؟ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. دیکھیے جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو دنیا ہم سے آگے بھاگتی ہے, اور جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ ڈرائیونگ لیسنس کچھ لیے تھے تو مجھے بہت ہی اچھی بات بتائی تھی, میرے والد نے بتائی ہوگی یا کسی کی یاد نہیں سے سیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم آہستہ چلو گی, آہستہ ڈرائیور جو ہوتا ہے, تو سب تم سے آگے رہیں گے کیونکہ سب مجھے کاٹ کے آگے چلے جائیں گے نا. سلو ڈرائیور کے پیچھے کون لگتا ہے؟ اور اگر تم تیز چلو گی تو سب تمہارے پیچھے رہیں گے. آپ اس جملے کو لکھ لیں, یہ دنیا اور آخرت پہ کام آتا ہے. آپ آگے بڑھیں, تیز چلیں. چھوٹے چھوٹے گول کیوں رکھتے ہیں زندگی کے؟ سب آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. جو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے گول بناتے ہیں نا لوگ, ان کو اپنے آگے لگائے ان کو پھر پیچھے لگائے رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹتے ہیں, ناراض ہو جائیں گے تم سے, چھوڑ دیں گے تم کو, اور دس اینڈ دیٹ. جی اور جی کوثر جی آپ نے کیا سیکھا؟ آپ شیئر کیجیے. لیکن شکر کریں کہ ابھی زندہ ہے. میں سوچتی ہوں کہ موت کے وقت کی ایک تو تلخی ہے نا, وہ تو ہے ہی ہے, موت کے وقت یہ کتنی تکلیف ہے کہ کچھ نہیں کیا. میں کفار اور نان پریکٹسنگ لوگوں کے بارے میں جب دیکھتی ہوں سوچتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں ان کو موت کے وقت میں کیا نزا کی زیادہ سختی ہوگی یا اس ریگریٹ کی سختی ہوگی کہ جو کر سکتے تھے وہ نہیں کیا. جی نسرین جی آپ نے کیا سیکھا؟ جی دنیا کی فکر کریں. یقین کریں ہم مریں گے تو صرف چار بچے یاد کریں گے, اور جب ہم دنیا کی فکر لگا کے جاتے ہیں نا دنیا سے, اللہ اکبر, اس وقت پھر ہمیں بہت یاد کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں تو ان کے بعد کوئی لوگ روتے ہیں چار دن تین دن روتے ہیں, اور کچھ جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا آخرت میں کتنا غم ہوتا ہے. ہمیں تو یہ فکر ہے ہمارا کیا بنے گا اگر ہم نے ان تک پیغام نہیں بچایا. یقین کریں کبھی تاریخ میں جھانک کے تو دیکھیں, ہم مسلمان تو وہ تھے ہی نہیں, آج وہ رہے ہی نہیں جو ہم تھے. آج ہمیں اپنے اوپر خود بھی یقین نہیں رہا. اور کوئی ادھر بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم کبھی گزرتے ہیں, کبھی میں نیچے جاؤں نا شعور سے, روز تو نہیں کبھی کبھی یاد آتا ہے, تو میں جان کے نیچے والا ہال جھانک کے جاتی ہوں. کھلا آؤٹ ڈور تو میں جاتی ہوں, کیا سوچ کے کہ دیکھوں سر آج رات کی شادی کیسی تھی. आज क्या है, और अक्सर उस वक्त सफाइयाँ हो रही होती हैं, गान बन पड़ा होता है, और कभी बहुत सजावा भी होता है अगले दिन की तैयारी का। तो मैं उस वक्त सोचती हूँ कि सिर्फ 2-3 घंटे के लिए लोग कितना सजाते हैं। ये जितने फूल हमारे पास इधर उधर आते हैं, तो ये किसी की वो कहना चाहिए कि मसली भी ख्वाहिशें ही है ना, अब उनको जरूरत नहीं है, वो हमें मिल जाते हैं। जी राम जी, तो क्या करना,
आप
मुझे क्या
उनसे
करना और
बात,
उनको क्या
आप
करना
उनसे
है
बात कर लें और फिर हम स्पीकर ऑन
इसमें,
करके,
वो
हाँ जी, और फिर ऑनलाइन पे भी
आप
ज्वाइन
बता
कर
दें
सकते
साथियों को क्या हो रहा है।
हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम
अस्सलाम। हमारे साथ एक सिस्टर हैं इंडिया से, जिन्होंने 2 साल पहले शहादा ली थी, और उसके बाद वो दोबारा से चाह रहे हैं कि वो शहादा लें, क्योंकि उस वक्त वो इस तरह नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह वो आज हमारे साथ क्लास में शहादा देंगे, वो रेडी है इंशाल्लाह ताला।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। जी सिस्टर शिफाली
जी
जी, मैं
शिफाली
आपसे
जी,
बात कर रही हूँ, आप बात जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हुआ? सही
वालेकुम
है
सलाम।
जी। सिस्टर कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप दूर होके भी इस वक्त हमारे बहुत पास हैं। तो सिस्टर आप कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या महसूस कर रही हैं? जी, इसको इसके साथ लगाएं। तो आप इस्लाम से मुत्तफिक हैं? अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचती हैं आप? और अल्लाह सुबहाना ताला किधर है? आसमान पे? जी नहीं, दिल में नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब तक हमें बात समझ नहीं आती ना, फिर हम उसको मानते भी नहीं है ना। तो बेसिकली हमारा ईमान ये है कि अल्लाह सुबहाना ताला एक है, ठीक है, मानते हैं ना, और उसका कोई शरीक नहीं है, पार्टनर नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, ठीक है, बेटी बीवी नहीं है, वो इंसानों की तरह नहीं है, और वो नूर है, जैसे रोशनी होती है ना। हम अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकते कि जैसे सूरज की रोशनी है या सुबलब की रोशनी है, बस वो एक ऐसी चीज रोशनी है कि जिसको हम अभी देख नहीं सकते ना। तो जाहिर है कि ऐसी बेजान चीज जिसको हम सोचें तो उसके तो फिर रिश्ते नहीं जोड़े जाते ना। तो पहली बात अपने दिल में ये रखें कि अल्लाह ताला की जात जो है वो हमारी तरह इंसानों की तरह नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो किसी इंसान के रूप में दुनिया में नहीं आ सकता, ठीक है ना, बहरूप नहीं उतार सकता, और वो आसमान पे है, सातवें आसमान पे है, लेकिन उसकी ताकत और उसकी कुदरत इतनी ज्यादा है कि इतनी दूर होने के बावजूद भी वो सुनता भी है, वहां से देखता भी है, जानता भी है। ये तीन बातें याद रखे ना, कि वो है आसमान पे, वजूद उसका है, पहली बात है उसका वजूद है, ये सिर्फ कोई तसव्वुर नहीं है हमारा, लेकिन उस वजूद के साथ वो देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, लेकिन हमारी तरह नहीं है कि दूर होने की वजह से सुने ना या दूर होने की वजह से देख ना सके, ठीक है। तो जब हम उसको पुकारते हैं ना, तो वो आसमान पे होने के बावजूद भी हमारी पुकार को सुनता है। तो उसने हमें पैदा किया है, और उसने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाऊंगा, और हम सब ने अल्लाह से ये वादा किया था अपनी रूहों की शक्ल में कि अल्लाह ताला हम तेरी बात को मानेंगे। तो अगर आज आप ये सोच के कलमा पढ़ना चाहती हैं ना कि आप बस ये कहती हैं कि हाँ अल्लाह है, मैं इस पे ईमान रखती हूँ, तो ये बात पूरी नहीं है। पूरे शऊर से कलमा हम पढ़ते हैं कि मैं अल्लाह को भी मानती हूँ और उसकी हर बात को भी मानूंगी। क्या आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार पाती हैं इसके लिए? और वो बात अल्लाह की क्या है मुझे कैसे पता चलेगी? वो कुरान में है, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली है। तो मुझे यकीन है कि अगर आप पिछले 2 साल से इस्लाम कम से कम जानती हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। लेकिन चलें, आप अपने पूरे बग़ैर किसी के मजबूर किए आप इस चीज़ के लिए तैयार है ना। और आपको ये भी पता है ना कि जब हम अल्लाह के बनते हैं तो हम पे आजमाइशें आती हैं। तैयार हैं इसके लिए? अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे। तो चलें, हम सब भी कलमा दिन में कई बार पढ़ते हैं, तो हम सारे पढ़ते हैं, मैं बोलती हूँ आप दोहराएं, हम सारे भी ना मुसलमान हो जाए खामोशी से। जी, अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु। जी, ये दो लफ्ज होते हैं ना, मैं एक एक करके चले पीछे से बोलती हूँ। अशहदु अल ला इलाहु इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वा रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ज़ुबान में ये कहा है कि मैं गवाही देती हूँ, यानी आई बियर विटनेस, या मैं मतलब इस चीज़ की गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई भी नहीं है माबूद, और मैं इस बात की भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर ये किस्म का अल्लाह ताला के साथ बंदे का अहद होता है कि अब मैं तेरे दीन को सीख कर और तेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँगी। और उसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिए उसको मानने की कोशिश करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारी मुसलमान बहन हैं, आप सब इनको मुबारक दें। यहाँ आपकी बहुत सारी बहनें बैठी हैं जो आपको मुबारक कह रही हैं। तकबीर कहें, अल्लाह अकबर। किस चीज़ की खुशी है हमें कि अल्लाह ने इनको आग से बचा लिया। अल्लाह ताला अब इनको हर उस काम से भी बचा ले कि जो अल्लाह की नाफरमानी के, और हमें भी बचा ले। और आप देखिए कि आप इस वक्त एक कोरे कागज़ की तरह ना, कि जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ने आपके पिछले सारे गुनाह इंशाल्लाह माफ़ कर दिए होंगे। अब आपने बहुत केयरफुल ज़िंदगी बसर करनी है, बिल्कुल जैसे साफ कपड़ा होता है तो उसको पहन के हम अब गंदा नहीं करते ना। तो इसके लिए ये कि इल्म की बहुत ज़रूरत है। बाद में आप अलग से बात करें तो मैं समझूंगी इंशाल्लाह कि आप क्या जानती हैं और जहाँ आप रहती हैं कहाँ सीख सकती हैं। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके लिए भी है कि ऑफ कोर्स आपने वज़ू गुसल तहारत थोड़ा बहुत पहले सीखा हुआ है ना। जी, आप देखिए सबसे पहले यही है कि आप गुसल कर लें। पहले कर रहा भी और नहीं किया तो पूरा एक अच्छी तरह से गुसल करना होता है। और अभी देखे हम आपके पास तो मेरा हाल शाम होने वाली है, 2 बजे यहाँ के तो वहाँ 6 बजे होंगे। आपके पास क्या टाइम हुआ सिस्टर? तो आप जो भी नमाज का वक्त है ना, आपको वो नमाज पढ़नी है। कैसे पढ़नी है अभी, जिस तरह भी आती है जो भी कर सकें करें, क्योंकि अभी मैं आपको इससे ज़्यादा यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आपके साथ इंशाल्लाह किसी तरह से करते हैं रब्ता। सबसे पहली चीज़ ये होती है तहारत के बाद कि अब आप नमाज जितनी भी आए बस उस वक्त पे खड़े हो के जिस तरह भी आता है कुछ भी अपनी ज़ुबान में करना चाहें, लेकिन आप 5 दफ़ा दिन में नमाज पढ़ेंगे ना। आमीन सुम्मा में। देखिए मैं इसे आमीन, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जितना अल्लाह ताला के मामले में ज़्यादा अमल करती रहेंगी, मानती रहेंगी ना हिकमत के साथ, इंशाल्लाह आपको बताएंगे किस तरह आप अपनी फैमिली को डील करें। लेकिन यह है कि जिस हद तक मुमकिन है कमरे में, क्लोज़ेट में, बस अभी तो आपने सफ़र शुरू करना है ना, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला देखेगा आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करेगा। और आप क्लास सुननी नहीं छोड़ें, क्योंकि ये जो हम कुरान पढ़ते हैं ना, इसी ने आपको इस चीज़ पे माइल किया ना कि आप अब शऊर के साथ मुसलमान होना चाहती हैं जी। तो इंशाल्लाह आपका इल्म का सफ़र जारी रहेगा तो बाकी सारे मामले आसान होंगे। तो फिर आपसे मैं बाद में फ़ोन पे बात करूँगी, ठीक है? जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर, ये तो मेरे लिए हमारी आज की आयतों के साथ था, इसको साथ ही हम अंदर ही डाल दें इस आईडी में, तो कितना टू द पॉइंट है। आप देखिए कि हम भी तो इसकी जगह हो सकते थे, उसको नमाज, ये इसका जो पहले हमारे पास मैसेज आए थे, अगर आपको पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है, क्लास का तर्जमा याद करने के लिए बाहर बाग में जाके याद करती है। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि मजबूर है? हमारे घर के हालात, हमारे शौहर, शर्म नहीं आती हमें ये बात सोचते हुए भी, जितने हमारे घर वाले हमारे माशाल्लाह इस रास्ते में मददगार हैं, इतने तो किसी के भी नहीं होंगे। तो सब दिल से इसके लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी करें। उसके कलमे के साथ अब हमारा भी ये कलमा एक दफ़ा रिवाइज हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे सबक पूरा हुआ, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शाम को एक कोर्स शुरू हो रहा है ऑनलाइन पे, अगर आपकी